आप सुन रहे हैं आशा की किरण और जीवन में नया सूर्योदय लेकर आई हूं मैं किरण आचार्य। आओ बच्चों, प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाओ, कहानी सुनो, पंचतंत्र की कहानी सुनो। बुद्धि बढ़ाएगी आगे ले जाएगी, जीवन का वो मूल मंत्र सुनो। कहानी सुनो, आशा की किरण पॉडकास्ट पर नानी की जैसी कहानी सुनो। गेम शेम सब छोड़ो बच्चों, किरण दी की जुबानी सुनो। कहानी सुनो, पंचतंत्र की कहानी सुनो। सभी प्यारे प्यारे बच्चों को किरण दी का नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? गर्मी की छुट्टियां कैसी बीत रही हैं? मुझे मालूम है आप बहुत मज़े कर रहे हो, ऑनलाइन लूडो और पता नहीं कौन कौन से गेम्स खेल रहे हो, और साथ ही आपने टीवी पर बहुत सारे सीरियल्स भी देखे हैं, जैसे कि दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत और चाणक्य, और इनको देख देख के आपकी जो हिंदी है ना वो एकदम सही हो गई है, आपको अच्छी हिंदी आने लगी है। और एक और हमारी जो भारतीय साहित्य में एक और इस तरह का ग्रंथ है जो बहुत हमको शिक्षा दे सकता है, उसमें है वो, उसका नाम है पंचतंत्र की कहानियाँ। मुझे मालूम है आपने इसके बारे में सुना है, लेकिन इस पंचतंत्र की भी अपनी कहानी आपको पता है? नहीं पता है तो आज की कहानी यही होगी कि पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी क्यों गई। दक्षिण के किसी जनपद में एक नगर था, उसका नाम था महिलारोप्या। वहां का राजा अमर शक्ति बड़ा ही पराक्रमी तथा उदार था, और संपूर्ण कलाओं में वो पारंगत था। उसके तीन पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। राजा खुद बहुत ही नीतिज्ञ, विद्वान, गुणी और सब कला में पारंगत थे, लेकिन दुर्भाग्य से उसके तीनों पुत्र उतने ही उद्दंड, अज्ञानी और दुर्विनीत थे। बहुत शैतानी करते रहते थे और कुछ भी समझते नहीं थे। तो अपने पुत्रों की मूर्खता और अज्ञान से चिंतित राजा ने एक दिन अपने मंत्रियों, मूर्ख और अविवेकी पुत्रों से तो अच्छा होता मैं निसंतान रहता, पुत्रों के मरण से भी इतनी पीड़ा नहीं होगी जितनी इन मूर्ख पुत्रों से होती है। मर जाने पर तो पुत्र एक ही बार दुख देता है, किंतु ऐसे पुत्र जीवन भर अभिशाप की तरह पीड़ा तथा अपमान का कारण बनते। हमारे राज्य में तो हजारों विद्वान, कलाकार एवं नीति विशारद महापंडित रहते हैं, कोई ऐसा उपाय करो कि निकम्मे राजपुत्र शिक्षित होकर विवेक के और ज्ञान की ओर आगे बढ़े। सभी मंत्री विचार विमर्श करने लगे। अंत में मंत्री सुमति ने कहा, महाराज, व्यक्ति का जीवन काल तो बहुत ही अनिश्चित और छोटा होता है। हमारे राजपुत्र अब बड़े हो चुके हैं, विधिवत व्याकरण एवं शब्द शास्त्र का अध्ययन आरंभ करेंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे। इसके लिए तो यही उचित रहेगा कि इनको किसी संक्षिप्त शास्त्र के आधार पर शिक्षा दी जाए, जिसमें सार सार को ग्रहण करें और निस्सार को छोड़ दिया जाए। ऐसे एक महापंडित विष्णु शर्मा आपके राज्य में ही रहते हैं। सभी शास्त्रों में पारंगत विष्णु शर्मा की छात्रों में बड़ी इज्जत है, प्रतिष्ठा है। आप तो राजपुत्रों को शिक्षा के लिए उनके हाथों में सौंप दीजिए। राजा अमर शक्ति ने यही किया। उन्होंने महापंडित विष्णु शर्मा का आदर सत्कार करने के बाद विनय के साथ अनुरोध किया, आर्य, आप मेरे पुत्रों पर इतनी कृपा कीजिए कि इन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान हो जाए, मैं आपको दक्षिणा में 100 गांव प्रदान करूंगा। तो बच्चों, आपको पता है आचार्य विष्णु शर्मा ने क्या कहा? आचार्य विष्णु शर्मा ने निर्भीक स्वर में कहा, मैं विद्या का विक्रय नहीं करता, देव मुझे 100 गांव लेकर आपकी विद्या आप अपनी विद्या नहीं बेचनी है, किंतु मैं वचन देता हूँ कि 6 माह में आपके पुत्रों को नीतियों में पारंगत कर दूंगा। यदि न कर सकूं तो ईश्वर मुझे विद्या से शून्य कर दे। महापंडित की यह विकट प्रतिज्ञा सुनकर सभी स्तब्ध हो गए। राजा अमरशक्ति ने मंत्रियों के साथ विष्णु शर्मा की पूजा अभ्यर्थना की। तीनों राजपुत्रों को उनके हाथ सौंप दिया। राजपुत्रों को लेकर विष्णु शर्मा अपने आवास पर पहुंचे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 6 मास में ही उन्हें अर्थ नीति में निपुण करने के लिए एक अत्यंत रोचक ग्रंथ की रचना की। इसके 5 तंत्र थे। इस ग्रंथ का नाम पंचतंत्र प्रसिद्ध हो गया क्योंकि ये 5 तंत्र थे, 5 विषय पर कहानियां कही गई थी, तो पंचतंत्र की कहानियां बन गई। लोक कथाओं से उठाए गए दृष्टांतों से भरपूर पंचतंत्र की कहानियां का ये रोचक ग्रंथ, इसका अध्ययन करके तीनों अशिक्षित और उद्दंड राजपुत्र ब्राह्मण की प्रतिज्ञा के अनुसार 6 महीने में ही नीति शास्त्र में पारंगत हो गए। इतनी अच्छी कहानियां हैं कि जो इनको कहानियों को सुनेगा वो नीतिगत अपने जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों में किस तरह से डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, सही गलत का, उसमें पारंगत हो जाएगा। तो ये कहानियां हम आपको रोज सुनाएंगे, पंचतंत्र की कहानियां। कहानियां कैसी होंगी? इस कहानी के अंदर 2 पात्र हैं, एक तो मनुष्य पात्र भी है और एक जो है पशु या जंगली जानवर, इनको भी पात्र बनाया गया है, वे भी बात करते हैं उसमें, तो बहुत रोचक कहानियां हैं। साथ ही एक बात और है कि कहानी खत्म नहीं, एक कहानी कहीं खत्म नहीं होती, वो कहानियों की माला है। जब हम एक कहानी को पढ़ते हैं तो वो दूसरी कहानी वहीं से चालू हो जाती है। तो जैसे जैसे आप कहानियां सुनोगे आपको पता चलता रहेगा कि ये किस तरह से कहानियां कही गई हैं। अच्छा, कहानी सुनने का तरीका क्या होगा? कहानी सुनने का तरीका ये होगा कि पहले आप अकेले बैठकर इस कहानी को सुनेंगे, ठीक है? फिर उसमें आपको कुछ कठिन शब्द लगेंगे तो आप उनको नोट कर लेंगे। नोट करके आप तो पापा मम्मी से पूछ सकते हैं, उनके साथ बैठकर भी उस कहानी को एक बार सुनिए, उनसे पूछते जाइए किसका क्या मतलब है। और फिर अगर आपको इतना करने पर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आपके जो मैसेज मुझे मिलेंगे उनको मैं अगले एपिसोड में आपको बता दूंगी उसका अर्थ क्या था। तो ये हुई मोटी मोटी बातें हमारी पंचतंत्र की कहानियों में हम क्या करेंगे। आप ज़रूर ये जो पंचतंत्र की कहानियाँ उनको नियमित सुनिए, है ना। नियमित सुनने से क्या होगा कि हमको पिछली कहानी भी याद रहती है और उसमें कहानी कहाँ से आगे बढ़ी थी वो भी हमको ध्यान में रहेगा। तो पूरी उम्मीद है कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे किरणदी के साथ ये पंचतंत्र की कहानियाँ रोज सुनेंगे, और फिर सुन सुन के, अभी तो सुनेंगे फिर बाद में अच्छे अच्छे मैसेज भी किरणदी को भेजेंगे कि उनको ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं। तो अभी आज इस पंचतंत्र की कहानियाँ दीजिए विदा अपनी किरण दीदी को। नमस्ते, ओके, टाटा, बाय बाय। आओ बच्चों, प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाओ, कहानी सुनो, कहानी सुनो, पंचतंत्र की कहानी सुनो। बुद्धि बढ़ाएगी आगे ले जाएगी, बुद्धि बढ़ाएगी आगे ले जाएगी, जीवन का वो मूल मंत्र सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो। आशा की किरण पॉडकास्ट पर नानी की जैसी कहानी सुनो। गेम शेम सब छोड़ो बच्चों, किरण दी की जुबानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, पंचतंत्र की कहानी सुनो, कहानी सुनो।
आप सुन रहे हैं आशा की किरण, और जीवन में नया सूर्योदय लेकर आई हूँ मैं किरण आचार्य।